نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج کا ہمارا ٹاپک خواتین کے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی اہمیت. پیچھے کیا دیکھا تھا؟ فرضیت، کہ یہ لازم ہے. آج ہم اس کی مور امپورٹنس دیکھیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. اس میں آپ ڈفرینٹ ٹاپک دیکھیں گے، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ہم اس کی اہمیت کو 6 مختلف ٹاپکس کے انڈر دیکھیں گے. یعنی یہ جو لفظ ہے نا، ان کو اپنے نوٹس میں ضرور لکھا کریں. جب کتاب آفر کی جاتی ہے، بہت بڑی بک لگتی ہے، کیا کریں، سمجھ نہیں آتی. نہیں، آپ سب کسی کو پوچھنے پہ بک کے پیج نمبرز نہیں بتائیں گے. یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہو. میں نے جو کل کا پڑھایا ہوا ریکیپ کیا، میں نے بغیر بک کھولے کیا ہے. کیوں؟ کہ میرے ذہن میں موجود ہے، یہ تھا اس میں، یہ حدیث تھی، یہ آئی تھی، نیکسٹ نیکسٹ، رائٹ. تو جب چیز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ بانٹ دیں گے نا، تو آپ فیل کریں گے کہ اس سے آپ کا انڈرسٹینڈنگ کا لیول بھی اچھا رہتا ہے، میموری بھی شارپ ہوتی ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ خواتین کے نیکی کے کام کرنے میں جو فوائد ہیں اور اس کی جو اہمیت ہے، اس کے 6 مختلف ٹاپک ہیں، اور یہ ہر ٹاپک اپنی جگہ ایک اہم ہے. نمبر ایک ہے کہ ماؤں کا اولاد کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں. پھر دوسرا اس کا اینگل ہے کہ اولاد کا ماؤں سے شدید تعلق، بچے ہمیشہ ماں سے ہی جڑتے ہیں. تیسری بات کیا ہے؟ کہ ماں کے فکری اختلاف کے سبب احتساب والد کا بے اثر ہونا. یعنی اس پہ ہم ڈیٹیلز پڑھیں گے، لیکن یہاں صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ بعض دفعہ ماں کا اثر باپ سے زیادہ ہو جاتا ہے. ماں کے فکری اختلاف، فکری اختلاف کیا ہوتا ہے؟ سوچ کا فرق. اس کا سبب کیا ہے؟ احتساب والد کا بے اثر ہونا. اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ماں باپ کے آپس کے معاملات کا بچوں پہ کیا اثر ہوتا ہے. پھر بعض بیویوں کا شوہروں پر عظیم اثر، یعنی تاریخ میں ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ خواتین جو اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں بھی ہوتی تھیں، لیکن وہ اپنے مردوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی تھی. باوجود اس کے کہ میں خود بھی ایک عورت ہوں، میں اس چیز کو ہمیشہ ایڈمٹ کرتی ہوں کہ عورت مرد پر بہت اثر انداز ہوتی ہے. ہم کہیں نہ کہیں، ہم مانیں نہ مانیں، لیکن ہمارے شوہر ہماری سنتے ہیں. اور عورت میں اللہ نے ایک نرمی رکھی ہے نا، ایک لوچ، ایک ابزارپشن. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ سپنج رکھیں گے تو پانی چوس لے گا، لیکن آپ اس کے ساتھ اگر پتھر کا ٹکڑا رکھ دیں، ربڑ رکھ دیں، پلاسٹک رکھ دیں، نہیں چوسے گا. لکڑی رکھ دیں گے، تھوڑا سا چوسے گی پھر چھوڑ دے گی، یا دیر سے چوسے گی. عورت کے اندر ابزارپشن ہے، عورت میں اٹریکشن ہے، فطری طور پہ ہے. تو چاہے وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، جو بھی روپ ہے نا، وہ اپنا اثر مردوں سے زیادہ لاتی ہے. بلکہ کئی لوگ یہ کمنٹس دیتے ہیں کہ تبلیغ مرد بھی کرتے ہیں، بٹ عورت کی بات پینیٹریٹنگ ہوتی ہے، کیونکہ ایموشنز غالب ہیں نا، اس کے اندر اللہ نے جذباتی پہلو زیادہ رکھا ہے. تو لہٰذا اس چیز کو انشاءاللہ دیکھیں گے. پھر پانچواں ٹاپک ہے کہ بیٹیوں کا بعض باپوں کی نظر میں خاص مقام. یعنی بیٹی جتنے اچھے طریقے سے باپ کو نصیحت کر سکتی ہے، یا باپ بیٹی کی مان سکتا ہے، عموماً دوسرے رشتوں کی وہ نہیں مانتے. پھر نیکسٹ تھنگ ہے کہ بہنوں کا بعض بھائیوں کی نگاہ میں خاص مقام، یعنی بھائی بہن کا رشتہ. تو یہ 6 ٹاپک ہے، آئیے ذرا ایک ایک کو کر کے دیکھتے ہیں. پہلا ٹاپک ہے کہ ماؤں کا اولاد کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں عورتوں کی اہمیت اور حیثیت کو اجاگر کرنے والی باتوں میں ایک یہ ہے کہ ماؤں کو باپوں کے مقابلے میں اولاد کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع میسر آتا ہے. باپ عام طور پر طلب رزق اور دیگر معاملات کی سر انجام دہی کی خاطر گھر سے باہر رہتے ہیں، اور عورتوں کا تو اصل ٹھکانہ ہی گھر کی چار دیواری ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں دلچسپی کی صورت میں خواتین کو مردوں کے مقابلے میں اولاد کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے بہت زیادہ مواقع ملتے ہیں. اس میں کسی کو کوئی شک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو معاشی ذمہ داریوں سے آزاد کیا تھا نا، کہ اس کو یہ نہیں کہا کہ تم کماؤ اور پھر لاؤ اور پھر دوسرے کھائیں، تو اس میں ایک بہت بڑی اس کی حکمت تربیت اولاد تھی. یہ جملہ لکھ لیں، خاص طور پہ جب لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں نا کہ جی عورت جاب کر سکتی ہے کہ نہیں، کیا حلال ہے حرام ہے، تو اس کا جواب آپ کو دینا سکھا رہی ہوں. آپ کا اپنا ذہن بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو معاشی ذمہ داریوں سے اس لیے آزاد رکھا ہے کہ وہ گھر رہ کر باقی کام تو وہ کریں گی ہی، بٹ بچوں کی تربیت کریں. جو عورت اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہو کر مال کما رہی ہے، وہ کبھی خوشی نہیں پائے گی. ڈالرز آئیں گے، پاؤنڈز آئیں گے، روپیز آئیں گے اس کے پاس، لیکن خوشی نہیں آئے گی. اسی طرح سے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے عورت کو ذہنی طور پہ بہت ریلیکسڈ نیوٹرل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو گھر میں رہ کر عموماً آپ خوشی رہتے ہیں. یہ آپ کو اس دن اندازہ ہو سکے گا جس دن آپ لوگ گھر سے باہر رہیں گے. کسی ایک دن آپ کام سے باہر چلے جائیں, شاپنگ کے لیے چلے جائیں, کسی آفس میں جائیں, کچھ بھی کریں, صرف روڈ کی ٹریفک میں ہی پھنسنے کے بعد آپ فیل کریں گے کہ آپ کے اندر چڑچڑاپن سا آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذمہ یہ بچوں کا کام لگایا. اب میں یہاں تھوڑی سی بات کروں گی آج کے لائف سٹائل پہ. آج جو عورتیں جاب نہیں بھی کرتی وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت اتنا نہیں گزارتی جتنا ان کو گزارنا چاہیے. مثلا بچے پہلے صبح اٹھ کے اسکول میں, اسکول سے واپس آتے ہیں, تھوڑا سا کھایا پیا تو وہ سپارہ پڑھنے چلے گئے, یا اسکائپ پہ کلاس ہونے لگ گئی, یا مولوی صاحب آ گئے, وہاں سے فارغ ہوئے تو شام کی ٹیوشن ہے, بیچ میں ماں نے زبردستی تھوڑا منہ میں لکمے ڈالے, سو جاؤ. آپ ذرا سا تھوڑا سا توجہ دیں اس بات کو. آپ دیکھیے کہ ایک ماں بچے کے ساتھ سارے دن باتیں تو نہیں کر سکتی, ہم کوئی بھی نہیں کسی کے ساتھ کرتے, بٹ اگر ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ اس طرح سے انوالو ہے, مثال ہے کہ سپارہ مولوی صاحب سے جو پڑھا رہی ہیں, تو ماں خود اگر قرآن ٹھیک پڑھی ہو تو ماں سے اچھا ٹیچر کوئی نہیں ہو سکتا. آج ہمارے یہاں ایک معروف جملہ ہے, بچے ماؤں سے نہیں پڑھتے. وہ مائیں جو دوسروں کو پڑھاتی ہیں ان کے اپنے بچے کسی اور سے پڑھتے ہیں. یہ ماں کی ہار ہے. میں نہیں مانتی کہ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی ذہنی طور پہ دور ہے کہ اس کی مانے ہی نہ. آج وہ آپ کے کہنے پہ آپ سے سبق نہیں پڑھ رہا, کل وہ آپ کی بڑی بڑی باتیں مانے گا. تو دیٹ مین یہ ہماری تربیت کا نقص ہے. شروع سے ماں کو چاہیے بچے کو اپنے ارد گرد رکھے. ایک وہ چھوٹا سا بچوں کی پکچر تھی تو اس پہ ایک مرغی بنی ہوئی تھی, اس کے پیچھے ایک چوزا بنا ہوا تھا, تو نیچے لکھا ہوا تھا آئی گو ویئر مائی موم گوز. تو مجھے بہت ہی پیارا لگا کہ اللہ کرے انسانوں میں بھی ایسا ہی ہو. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا, آج بھی ہوتا ہے کسی حد تک, لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں کہ مائیں گھر میں بچوں کو ٹی وی پہ, کارٹونس پہ اور بیکار چیزوں میں ڈال کر شاپنگ پہ جا رہی ہیں, کبھی جیولری پہ جا رہی ہیں, بچوں کے وہاں کیا کام ہے. تو لہٰذا جتنی ماں کی آؤٹ ڈور سرگرمیاں پڑی یا گھر میں رہتے ہوئے, کچھ مائیں وہ کھاتی پکاتی رہتی ہیں, اب بچے بیٹھے ہوئے اپنے ٹی وی دیکھ رہے ہیں. یہ مت سوچئے کہ آپ اپنے بچے کو ٹائم دے رہی ہیں, یہ سوچے کہ بچہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے. بس آپ دیکھیے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور کوئی ایک آپ کو کہتا ہے ایکسکیوز می کین آئی ہیو 5 منٹ پلیز, میں آپ کے 5 منٹ لے سکتی ہوں, آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, جی ضرور, وہ بات کر رہے ہیں نا. اب دیکھیے دونوں کے 5-5 منٹ لگ رہے ہیں نا, بٹ کس نے کس کو ٹائم دیا؟ آپ نے اس کو دیا ہے جو اس وقت آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. بات سمجھ رہی, اتنی بس سمجھے. یہ بڑا اہم نقطہ بتانے والی ہوں آپ کو. بعض مائیں اپنے بچوں کو یہ سوچ کر کہ ہم ان کو ٹائم دے رہی ہیں, اصل میں وہ ان کو ٹائم نہیں دے رہی ہوتی, ان کا ٹائم لے رہی ہوتی ہیں. تھوڑا سا اس کو سمجھے اور بھی آسان کرتی ہوں. آپ دیکھیے کہ جب میں نے کسی کے کہنے پہ رک کر اس کی بات سنی تو میں نے اس کو اپنے 5 منٹ دیے نا, مجھے تو کوئی کنسرن نہیں تھا اس سے, مجھے تو پتا بھی نہیں وہ کیا کہے گا. اس کی بات سننے میں میں نے اپنے 5 منٹ دیے. اپنے سے ایک سوال کیجئے, دن میں کتنا وقت آپ اپنے بچے کو دیتی ہیں؟ بچے کو کب دیں گی؟ جب بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے اور آپ بالکل خاموش ہو کے اس کو سنتی ہیں. جی میرا بچہ بولو کیا. یہ جب آپ کہتے ہیں نا کھانا کھا لو, یہ آپ نہیں اس کو دے رہی, وہ غریب آپ کو دے رہا ہے, چلو کپڑے بدلو, یہ آپ نہیں اس کو دے رہی, یہ تو وہ آپ کو دے رہا ہے. بات سمجھ گئے, بچوں کے دل کی بات سنیں. بہت بڑا تربیت کا نقص وہاں پڑتا ہے کہ مائیں بچوں کے دل کی بات نہیں سنتی. اکثر ماؤں سے پوچھے, ہم تو جی سارا دن بچوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں, اور ذرا سے گروئنگ ایج کے بچے ہوں گے نا 7-8-10 سال کے, تو آپ اکیلے میں پوچھے وہ کہیں گے مائی موم ڈونٹ گیو می ٹائم, میری ماں میری بات نہیں سنتی. اور جتنے بچے گرو ہو رہے ہوتے ہیں نا, خاص طور پہ 8-9-10-11-12 سال کی عمر, جب جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس وقت بچے سے کہیں آج میرا بیٹا بیٹھو, جو کہنا ہے کہو, لطیفہ سناؤ, شعر سناؤ, قرآن سناؤ, دل کی سناؤ, میری گود میں سر رکھو, آئی ایم ریڈی فار یو, دس ٹائم از فار یو. سیل فون بند کر دیں, یہ ہے آپ کا اس کو ٹائم دینا. تو یہ جو سارا دن یل کرتے ہیں, یہ ہم ٹائم نہیں دے رہے ہوتے, یہ تو وہ غریب ہمیں دے رہے ہوتے ہیں. کتنوں کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ پوائنٹ کلیئر ہے میرا؟ بس اس کو ذہن میں رکھے, صرف 5 سے 15 منٹ اگر آپ انڈیوائڈیڈ اٹینشن اپنے بچے کو دے دیں گے نا, کبھی وہ بچے ماؤں سے دور نہیں ہوتے. ماؤں کو دوسروں کو نہیں کہنا پڑتا اس کو سمجھاؤ, इसको बताओ। भाई माँ तो आप है तो मैं क्यों बताऊँ? नहीं मेरी ये सुनते नहीं, बच्चे कब नहीं सुनते? अब इसका अपोजिट देखें, आप चाहती हैं कि आप बच्चे को बुलाओ, अहमद इधर आओ, तो बच्चे दौड़, जी मामा, अहमद आओ खाना खा लो, चलो अहमद स्कूल चले। आप चाहती हैं फ़ौरन हर बात पे वो लब्बैक के, और कभी बच्चा आपको आवाज़ देता है मामा क्या है, चीख रही हैं, फ़ोन पे हूँ। अब वो बच्चा खामोशी से देख रहा है कि मैं कब से माँ को बुला रहा हूँ, हो सकता है उसको चोट लगी, हो सकता है उसको वॉशरूम में कोई चीज़ चाहिए, कुछ भी है, या कोई बात ही शेयर करना चाहता है, लेकिन माँ का कठोर सा जुमला है। और इतने में फ़ोन की एक बेल बजती है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, किधर हो? तो फिर बच्चा क्या कहेगा, काश मैं, बोलिए, मैं स्मार्टफोन होता। आज ये बात आम होती जा रही है कि मेरी मॉम फ़ोन की पहली बेल पे यस कहती है और बड़े प्यार से कहती हैं। ठीक है, बात वैसे करना क्या है, बच्चों को वक्त देना है। और बिलीव मी, आप और मैं इसको दावा के ज़िमन में पढ़ रहे हैं ना कि हमने अमर बिल मारूफ करना है, इसके लिए द बेस्ट टाइम आपका बच्चों को वक्त देने का शाम को, रात को उनके बिस्तर पे जाने का वक्त है। हमारे कल्चर में रात की कहानी बड़ी मारूफ है, ये मशहूर है ना, आप अपने बच्चे को जितना अच्छा नेकी का हुक्म उसके सोने के वक्त दे सकती हैं कभी नहीं दे सकती, या जिस वक्त वो स्कूल से आते हैं उस वक्त सुने, बैठ के साथ खाना खाएं। क्या मुसीबतें हैं हमारे ऊपर, क्या मुश्किलात हैं। हम मैं 4 सालन के साथ पांचवा सैलड ना भी बनाऊंगी ना कोई बात नहीं, बट अगर मैं अपने बच्चे की 5-10 मिनट बैठ के बात सुन लूँगी ना, ये उसके लिए मोर इम्पॉर्टेंट है। बाज़ मैं खिला खिला के मत मार देती हूँ लेकिन बात नहीं सुनती। तो खुलासा क्या निकला, माँ अपने बच्चे को वक्त दे और उसमें अच्छे अच्छे अखलाक सिखाए, अच्छी अच्छी बातें सिखाए, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बाप की निस्बत ये काम बहुत आसान है। सेकंड थिंग देखिएगा, औलाद का माँ से शदीद ताल्लुक, ये बात मुसलिमा है। अब इसको आप कैसे पढ़ेंगे, मुसलिमा मसलमा नहीं, मुसलिमा। अब आप अरब लगा लीजिए बुक पे, क्योंकि उर्दू अरबी में अरब का ही फ़र्क होता है। तो ये बात मुसलिमा मीन तस्लीम शुदा, ये बात अप्रूव्ड है कह लें। औलाद का बाप के मुकाबले में माँ से ताल्लुक आम तौर पर ज़्यादा गहरा और शदीद होता है। इसी बात की गवाही में ये एक ये है कि बच्चे अपने दिल की बातें बापों की नस्बत माओ से ज़्यादा करते हैं। लड़कियों के निकाह के बारे में माओ से मशवरा करने की हिकमत बयान करते हुए बाज़ उलमा ने कहा कि बच्चियों का मेलान माओ की तरफ ज़्यादा होता है, मेलान समझते हैं, झुकाव, इंक्लिनेशन, और इनकी बात सुनने और मानने में बच्चियों की रग़बत यानी मोटिवेशन या उनका शौक़ ज़्यादा होता है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि बच्चियों का मेलान माओ की तरफ ज़्यादा होता है, इनकी बात सुनने और मानने में बच्चियों की रग़बत ज़्यादा होती है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने फरमाया, वल बनातु इलल उम्महाती अमयलु वली क़ौलिहिन्न अरग़ब, बेटियों का रुझान माओ की तरफ ज़्यादा होता है और वो इनकी बात को ज़्यादा कबूल करती हैं। ज़रा ये जुमला आपने अपने घर के माहौल पर रख के सोचिए, क्या आपके घर में यही तरतीब है? मैं फिर बोलती हूँ, बेटियों का रुझान माओ की तरफ ज़्यादा होता है और वो इनकी बात को ज़्यादा कबूल करती हैं। आज लोग क्या कहते हैं, मेरी तो मानती कोई नहीं है, बाप से कह दो मन वाले, अब्बा से पूछ लो। यानी आज कॉन्सेप्ट्स फ़र्क हो गए हैं, कम्युनिकेशन गैप है औलाद के साथ। पेट में रखा हुआ बच्चा, दूध पिलवाया हुआ बच्चा, हमारे साथ साथ उंगली पकड़ के चलता हुआ बच्चा, जब उसका कद बड़ा होने लगता है या हमारे कद के बराबर होने लगता है ना, तो वो हमारे लिए और हम उसके लिए नाकाबले बर्दाश्त हो जाते हैं। और मैं सच बताऊँ, बड़े दर्द से कहूँगी कि बाज़ बच्चों का तो मैंने देखा है ताल्लुक़ फिर माँ बाप दोनों से कह लीजिए सिर्फ ज़रूरतों का रह जाता है। चापलूसी, 1,000 रुपया दे देना, ये सूट दिला देना, जब कुछ चाहिए ना तो वो मोहब्बत भी आ जाएगी, मिठास भी है, नरमी भी है, लाड भी हो जाएंगे। औलाद वो है जो आपके एक इशारे पे अपनी जान देने को तैयार हो जाए। किसने कहा कि ए अब्बा जान ए फल मा तोमर, कर दीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया। इस्माइल सिखाए, किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, ये मकतब की करामत थी कि किसी का फिजान नज़र। वो कौन सी स्कूल के पढ़े हुए थे, आज हमारे बच्चे भारी फीसों से पढ़े हुए। मुझे अभी चंद दिन पहले एक माँ के साथ बैठने का इत्तेफाक हुआ, जो बच्चे की फ़ीस उसने बताई मैं तो हैरान रह गई, 1,00,000 रुपया देंगे हर 3 माह का। मैंने कहा उसमें क्या सुरहाब के पर लगे हुए, नहीं उसमें नाम बहुत और जगह नहीं मिलती और दिस एंड दैट। यानी मैं ये सोचती हूँ कि इतनी कोशिशों और मेहनतों का नतीजा क्या है। रिजल्ट से ही बात समझ आती ना। आप ये फूल खरीद के ले आए, ये महंगे सस्ते थे, कैसे पता चलेगा? इनकी लुक से पता चलेगा, रिजल्ट देखेंगे। हाँ वाकई रियल है, वाकई खूबसूरत है, खुशबू बड़ी प्यारी है, बहुत नाइस लग रहे हैं, ले लो, रिजल्ट अच्छा है। कीमत आप इसमें दें असली फूलों की, और हों ये प्लास्टिक के फूल, तो वो वर्थ तो नहीं बनी ना। हमेशा याद रखिए, इस्लाम मना नहीं करता आपको, मुझे किसी चीज़ से मना नहीं करता। इस्लाम का मिजाज जो है ये हमेशा रिजल्ट्स देखो क्या है। तो जब आपके हमारे बच्चे इतने महंगे स्कूलों में जाते हैं, जाएं हैं हमारे पास, हम दे देंगे पैसे, बट उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? तो ये बात जो समझ आ गई कि बेटियों का रुझान माओ के साथ और माओ का रुझान बेटियों से होना चाहिए, बॉन्ड होता है एक, वैसे भी सेम जेंडर की एक अट्रैक्शन होती है। जैसे मैं औरत हूँ ना, मैं आपके साथ बात करूंगी ना, बहुत इजीली आप मेरी बात समझेंगे। एक मीटिंग में सिर्फ औरतें बैठी होंगी ना, तो हम सब एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी इजीली समझेंगे। आप दो मर्दों को, चार औरतों को बिठा दें, कितने क्रॉस क्वेश्चनिंग आएंगे, उनकी माइंड लेवल नहीं मिलता। कहेंगे औरतें तुम लंबी बात बड़ी करती हो, जल्दी करो, टू दी पॉइंट, टू दी पॉइंट बात करेंगे तो औरतें कहेंगी बात कुछ समझ नहीं आई, ज़रा खोल के बताएं। एक मेंटल लेवल अल्लाह ने बनाया है, तो बेटी का माँ से ताल्लुक बाप से ज़्यादा होना चाहिए। अगर नहीं है, देर इज़ समथिंग मिसिंग, ये कोई रॉन्ग चीज़ है, उस मिसिंग फैक्टर को दूर कर ले, फिर ठीक है। बेटियों का ताल्लुक हमारा, हाँ पता कब ज़्यादा होता है? जब एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, या माँ नहीं रहती तो या बेटी नहीं रहती, फिर रोती हैं बैठ के। और बाद दफ़ा दूर रहें तो बड़ा ताल्लुक है, करीब एक जगह बैठे तो एक 10 मिनट नहीं लड़ाई के बगैर गुजरते। ये नक्स है तरबियत का। बहरहाल ये लिखते हैं कि ये कैफियत सिर्फ बेटियों ही की नहीं, बेटों की एक कसीर तादाद का मामला भी माओ के साथ ऐसे ही है। कितने ही बेटे ऐसे हैं कि इनके बाप इन्हें किसी बात के समझाने और मनवाने की खातिर बहुत ज़्यादा वक्त और मेहनत सर्व करते हैं, लेकिन सारी सही और कोशिश बेअसर साबित होती है। लेकिन जब इसी बारे में माएँ मुदाखलत करती हैं, तो अल्लाह ताला इनके शीरी और नरमो नाजुक चंद कलेमात में ऐसी तासीर डाल देते हैं कि अफकार में तगैयुर यानी तब्दीली पैदा हो जाती है, यानी बच्चे अपनी सोच बदल लेते हैं, ख्वाहिशात यकसर बदल जाती हैं, अजायम का रुख मुकम्मल तौर पर पलट जाता है, मनसूबों की सिमत बदल जाती है, बल्कि ज़िंदगी का नक्शा ही यकसर मुख्तलिफ हो जाता है। बसा औकात प्यारी माओ की आंखों से टपकने वाले चंद आंसू अल्लाह की तौफीक से ऐसे नतायज पैदा करते हैं जो कि बीसियों तकरीरें और दुरूस पैदा नहीं कर सकते। माँ की आंखों से बहने वाले चंद कतरे बसा औकात वो बात आसानी से मनवा लेते हैं जिनके मनवाने के लिए कुव्वत और ताकत वाले आजिज रहते हैं। बाप की मुखालफत के बावजूद माँ के कहने पर नन्हे अनस रजी अल्लाह अन्हो का कलमा तौहीद पढ़ना माँ की शिद्दत तासीर का मुंह बोलता सबूत है। बात वाज़े, और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको वाकई महसूस करें तो उतनी ज़्यादा ये बात समझ आएगी। तो खुलासा क्या निकला? दो बातें हमने पढ़ी अभी तक। पहली बात है कि माएँ अपने बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती हैं और उनको गुजारना चाहिए, और दूसरी बात हमने क्या देखी है कि माओं की बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बापों की निस्बत ज़्यादा होती है। ये आप अपने घरों में भी देख सकते हैं। तो लिहाजा जिसका असर ज़्यादा है और जो वक्त ज़्यादा गुजार रही है, जब वो अच्छी बात का हुक्म देगी, बुरी से रोकेगी, तो उसका असर भी तो ज़्यादा होगा ना। याद रखिए, हम किसी की बात को नहीं मान रहे होते, हम उसके ताल्लुक़ को देख रहे होते हैं। किसी भी जगह अगर आपने दावत देनी है ना, पहले अपना उसका ताल्लुक बनाए, जैसे कनेक्शन जोड़ा। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ ना, तो मैंने प्लग लगाकर माइक खोला है, फिर मैं बोल रही हूँ ना। बटन बंद रखूँ और मैं बोलना शुरू कर दूँ, फ़ोन का नंबर डायल ना करूँ और मैं बोलना शुरू कर दूँ, क्या मेरी बात दूसरों तक पहुँचेगी? बस ये, जब भी तबलीग करें, साथ ही साथ हम हिकमतें भी सीखते जाएँ ना। जब भी बच्चे को या बड़े को, किसी को कोई बात करें, पहले चेक करें कि वो सुन रहा है। सोते बच्चे के पास अब तकरीर भी कर आएंगे ना, उठो नमाज पढ़ो, तबाह हो जाओगे, बेनमाजी हो, मुनाफिक हो गए, शैतान पेशाब कर देगा, ये सारी हदीसों के खुलासे हैं। 100 बातें कर दे, पता चले उसने एक भी नहीं सुनी, क्योंकि वो तो खराटे ले रहा, क्या फ़ायदा हो? या ऐसे ही बंद फ़ोन को उठाकर मैं बातें शुरू कर दूँ और अगले को मेरा कनेक्शन ही नहीं मिला। कनेक्शन जोड़े, कनेक्शन जोड़ना इज़ वेरी हार्ड बात मनवाने या बात सुनाने की निस्बत। ठीक है, इसमें कोई सवाल तो नहीं आपके जहन में? कोई क्रॉस क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे तो मेरी नहीं सुनते, वो तो मेरी बात सुन के कहते बस बस चुप। अगर ऐसा कुछ है ना, तो कहीं ओवरडोज हो चुकी है आपकी तरफ से, कहीं आपने ज़रा सख्त हाथ से इंजेक्शन लगा दिया था, अब वो डर चुका है कि नहीं ये इंजेक्शन लगता है तो मेरे तो बाजू में स्वेलिंग हो जाती है। बैक टू बेसिक, वापस उस बच्चे को छोटा करें, तसव्वुर में लाएं, ये आज भी वही बेबी है जिसको मैं गोद में लेती थी, आज भी ये मेरा छोटू ही है, ये आज ही मेरी छोटी है। उस प्यार और मोहब्बत के साथ वो जो बीच में गिरें पड़ चुकी हैं ना, या आप कह लें कि कोल्ड वॉर है ना, टसल है, उसको ख़त्म करें, वरना ये फिर आपके जाने के बाद ही आपको याद करेंगे, आपके सामने नहीं करेंगे। जी आप,
मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी बच्चों की स्कूलिंग के हवाले से, भी जिस तरह से बात हो रही थी, वैसे तो ये मेरा पर्सनल मैटर है, अगर आप बाद में टाइम दे सकती हैं तो मैं इस बारे में कुछ मशवरे लेना चाहूंगी।
अभी ले बात कर ले थोड़ी सी, इसलिए कि सबका फायदा होगा।
यही सबके मसाइल है कि जी अच्छा, मेरा बच्चों को अच्छे स्कूल में डालने की नीयत सिर्फ और सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि दीन और दुनिया दोनों की बेहतरीन तालीम हासिल करने की कोशिश की जाए, वरना मुझे इन स्कूलों में जितनी सॉरी टू से बट बेहयाई डेफिनेटली इन स्कूलों में मौजूद है, अपनी तरफ से तो मेरी पूरी कोशिश है, मेरी बच्चियां अभी सिर्फ 9 साल की और 7 साल की हैं और दोनों स्टाफ भी लेकर जाती हैं और मैं हत्तुल इम्कान उनको हर चीज बताती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मुझे ये समझ नहीं आती। और मैं आपको बताऊं, अभी आप 3 महीने कितनी फीस बता रहे हैं, हम 2 महीने की 30,000 रुपए एक बच्ची की फीस दे रहे हैं और वो हम कैसे दे रहे हैं, हम दे ही नहीं रहे, हमारा अल्लाह दे रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारी इस नीयत के ऊपर। मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं इनको यहां से निकाल कर कौन से ऐसे स्कूल हैं, आप स्पेशली बहरिया में रहते हुए ऑप्शन और कम हो गई है हमारे पास, इस हवाले से मुझे वाकईतन गाइडेंस चाहिए कि मैं अपने बच्चों को वहां से अगर निकालू तो वो कौन सी जगह हो जहां पर लाइक इस्लाम भी हो, और डेफिनेटली दे आर ऑल मुस्लिम्स लेकिन अमल जो है वो उस तरह से नजर नहीं आता, फिर फीस हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, तो हम उन्हें कहाँ बहरिया में रहते, तो कौन सा ऐसा
आपके
स्कूल,
बच्चों की एज क्या?
बड़ी 9 साल की और छोटी अब 7 साल की होगी मई में,
शुरू से इसी स्कूल में?
सब बड़ी बेटी को घर के पास एक स्कूल में डाला, वो जैसे गली मोहल्ले के स्कूल होते हैं, बाटा में हम लोग रहते थे, मैं डरती भी बहुत थी कि बच्ची को दूर भेजूं, तो मैंने उसे काफी पास स्कूल में डाला, लेकिन वहां पर उसके साथ बाकायदा आप यकीन करें इतनी अजीब अजीब हरकतें निकली, वो बहुत शाये तबीयत की थी, अब भी अगर इत्तफाक हुआ मैं आपसे जरूर मिलवाऊंगी, टीचर ने उसको इतनी ऊंची अलमारी पे बिठा दिया, वो 3 साल की थी उसने वहां से जंप लगा दी, फिर उसको 2 कतरे पोलियो के ड्रॉप्स के पिलवाने के लिए गैर मर्दों से, गैर मर्द से मुराद जो स्कूल का पीएन होता है, चलो मैं उसको भी गैर ना कहूँ, अगर मैं कहूँ तो एटलीस्ट बच्चा उससे फेमिलियर होता है कि अच्छा यार ये हमारे फलां भाई हैं या हमारे फलां टीचर हैं, बाहर से आने वाली टीम ने उसका मुंह उसके बाजू और उसकी टांगे पकड़कर उसको 2 कतरे जबरदस्ती पिलाए, उसका पिशी निकल गया, वो पैंपर फ्री बच्चा था, वो घर आई वो भीगी हुई थी सर्दियों के दिनों में, मैंने इतनी टेंशन में वो 5 महीने गुजारे हैं, मेरी बेटी रोती हुई जाती थी रोती हुई आती थी, हालांकि आप उसे मिलेंगे ना तो आप कहेंगे कि अच्छा ये अब अगर आप कहती हैं कि नॉटी हो गई है तो ये पहले क्या होती होगी, आप सोचिए कि मैं अपनी बच्ची को ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बिठा के कहीं काम कर लेती थी, वो कभी इतना भी नहीं करती थी कि यार मैं यहाँ से छलांगी मार कर देख लूं, मैं यहां से तो निकलू, ऐसा वो मेरा प्यारा सा छोटा सा मुन्ना सा बच्चा था। वहां से फिर मैंने उसका स्कूल चेंज करवाने के बारे में सोचा और भी बहुत सारी चीजें थी जो नाकाबिले बर्दाश्त, स्कूल चेंज करवाने का सोचा, बड़ी बहन के बच्चे भी कहना उसमें पढ़ते थे कैनाल साइड कैंपस में, उन्होंने कहा कि कितने स्कूल बदलवाओगी, इस तरह के सारे स्कूल ऐसे ही होते हैं, वहां से भी कहना उसमें गई, कैनाल साइड कैंपस में ऐसे हालात इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन अब यहाँ बहरिया में आकर एक तो तालीम का मेयार कैनाल साइड कैंपस वाला नहीं है, फिर फीस डेफिनेटली आगे आगे भी, और जिस तरह से जिंदगी के हालात चलते चले जा रहे हैं नाकाबिले बर्दाश्त होती चली जा रही है, वही चीजें घर की कितनी ही चीजें घर के लिए आसानी पैदा हो सकती है, मुझे ज्यादा फीसें दे के कुछ स्टेटस बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं स्टेटस कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हूँ कि हाँ जी मेरे बच्चे भी कहना उसमें पढ़ते हैं, मुझे उनकी सिर्फ और सिर्फ तालीमी मेयार चाहिए।
देखिए, अब आप आपकी जो बात है ये सिर्फ आप ही की नहीं होगी, ये इस शहर में हर माँ की होगी जिनके भी बच्चे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं। इसका मतलब ये है, ज़रूरत क्या है? अच्छे स्कूल्स और अच्छे टीचर्स बनाने की, ऐसे ही है ना? चले, आपके बच्चों ने ये एक्सपीरियंस कर लिया, आज से 5-6 साल के बाद के बच्चों के लिए अगर आप और कोई कोशिश करे, कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसा इदारा बन सकता है ना, वो कहाँ से बनेंगे जब कुरान पढ़ी हुई टीचर्स और स्टाफ मिलेगा। मैं हर बात के एंड पे इस नतीजे पे पहुंचती हूँ कि लोगों को कुरान पढ़ा दो। आज सुबह हमारी कोई 2 घंटे की मीटिंग थी किसी एक कंट्री में, तो बात हो रही थी कि बच्चों के स्कूल इधर एक और भी है, दूसरा भी है, तीसरा है, तो क्या ख्याल है इस नाम पे अगर हम कोई बात करें कि बच्चों के लिए कोई काम करना है तो उसकी ज़रूरत है? तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आप देखें ना तो हम बच्चों के लिए नहीं काम करते डायरेक्ट, जैसे हमारे जो भी स्कूल हैं, हम बच्चों के टीचर्स तैयार कर रहे हैं। कुरान पढ़ी हुई एक स्टूडेंट 2-3 साल में इस दर्द का शिकार हो जाती है कि ये बच्चे उम्मत के बच्चे हैं, उम्मत वसत है, इनको दुनिया में लीडर बनाना है। अब वो औरत जब किसी बच्चों के स्कूल में जाके टीच करेगी, फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा? ये एक तरतीब चल रही है कई साल से, जहाँ पहले सिस्टर्स की क्लासेस शुरू होती हैं उर्दू की, फिर उसके बाद उसी में आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश का कोर्स, या जो उस मुल्क की लैंग्वेज होती है, जैसे नॉर्वे में नॉर्वेजियन है, फ्रांस में फ्रेंच है, तो वो क्लासेस शुरू होती हैं, तो उसके फ़ौरन बाद फिर बच्चों की डिमांड शुरू हो जाती है ना। तो बच्चों की डिमांड पूरी करने के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर चीज़ ये है कि हम सिस्टर्स को कुरान पढ़ा दें, फिर वो काम करें, और जो टीचर्स कुरान पढ़ी हुई होती है ना, उस जैसा कोई दूसरा टीचर नहीं है। इसके लिए आप पूरा, अभी फ़िलहाल एक रात में तो ये आपके बच्चे नहीं चेंज होंगे ना, आप पहले इसके लिए दर्द पैदा करें। हम सब पेरेंट्स को इस वक्त इस चीज़ का शिद्दत से एहसास होना चाहिए। कपड़े बने ना बने, खाने ज़्यादा पके ना पके, इस वक्त आप एक इसको इशू बना लें। जैसे आप इस वक्त जो सिस्टर्स हैं मोस्टली इसी कम्युनिटी की होंगी ना, आप सारे बैठें किसी मौके पे, सोचें हम इधर एक स्कूल बनाते हैं, कैसे स्कूल बनता है, उसका स्टडी करें, देखें कोई इजाज़त लेनी पड़ती है, ये प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं। आपका लोग जो स्कूल बनाते हैं वो तो पैसों के लिए बनाते हैं ना, या वो एजुकेट करना चाहते हैं। आप ऐसा स्कूल बनाएं जिसके अंदर आप ऐसे सिस्टम को डेवलप करें कि आपके बच्चे वहाँ दुनिया का भी बेस्ट सीखे, दीन का भी। ज़्यादा लोगों से ना जाने ना करें, मैं ऐसे साथियों को जानती हूँ, अमेरिका की बात है, आपके पास तो शुक्र करें मुस्लिम स्कूल है, वहाँ तो मुस्लिम का नाम भी नहीं होता ना, तो वहाँ तो आपको उनके ड्रेस ही ऐसे होते हैं कि जिनको देखकर आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा इससे पढ़ेगा या इसको देखेगा, मिसाल दे रही हूँ। तो कुछ दर्द रखने वाले पेरेंट्स ने यही किया काम जो आपको मैं कह रही हूँ। उनको बहुत तकलीफ थी इस बात की कि हमारे इर्द गिर्द कोई बच्चों का इस्लामिक स्कूल नहीं है। मीटिंग की, 4-6 पेरेंट्स मिले लाइक माइंडेड, मिल के अब करें क्या, कहाँ से करें, जो भी प्रोटोकॉल था। एक सिस्टर ने कहा मेरे घर का बेसमेंट यूज़ कर लें, वो कहती है मैं खुद जाके देख के वहाँ रह के आई हुई, उनके अभी भी बोर्ड्स लगे हुए, वो कहती हैं सजा ये इस वक्त वहाँ, अब वो एक बड़ा अच्छे नाम से वेल नोन स्कूल बन चुका है, 200-250 बच्चे वहाँ फुल टाइम पढ़ते हैं। तो वो कहती हैं ये उस स्कूल का ये पहला स्कूल है, बेसमेंट घर का खोला, शुरू करो, कौन पढ़ेगा कौन पढ़ाएगा, तजवीद आपकी बेहतर है, किसी एक को जिनको दुनियावी एजुकेशन की डिग्री अच्छी थी उनको साथ लगाया, काम शुरू कर दिया। आज वो चलते खुद ही रास्ते बनते गए, बिल्डिंगें भी बन जाती हैं, यकीन करें सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये दर्द रखने वाले लोग थे। और इसको आप संजीदगी से लें, आप ये ना सोचें कि मेरे तो बच्चे ही नहीं, चलो मेरे तो पढ़ चुके, नहीं तो आपके बच्चों के बच्चों के लिए अभी से काम शुरू कर दें, इस ज़रूरत को महसूस करें। एक बात, दूसरी बात जो इससे बहुत ही अहम है, जो क्विकेस्ट भी है, सब मिलकर ऐसे स्कूल्स में जहाँ आपके बच्चे जाते हैं जाइए, टाइम लें, अच्छे तरीके से उनको बुला लें या कर लें, कोई चाय पानी का अरेंज करें, हाई अथॉरिटीज़ के साथ जाकर स्कूल को जो चलाने वाली हैं उनसे मीटिंग करें, मुझे ले चलें, मैं फारिग हूँ, आप हर स्कूल वालों से एक प्रॉपर मीटिंग रखाएं, किसी भी एंगल से इस बात की अहमियत का उनको एहसास दिलाया जा सकता है कि आपके हाथों में उम्मत का मुस्तकबिल है। आप इनके साथ सिंसियरली कोशिशें करेंगे तो ये कल आपका सदका जारिया होंगे। जो इस वक्त के चले हुए स्कूल हैं उनको ठीक करें, हम एकदम स्क्रैच से काम नहीं शुरू कर सकते, जो किया हुआ उसको करें। और हमारे दीन का यही मिजाज है, नबी सल्लम जब आए थे हर फील्ड में बिगाड़ था, हर इदारा कमज़ोर था, लेकिन आपने क्या किया, एकदम सब ख़त्म नहीं कर दिया। अब आपसे मैं कहूँ सब अपने बच्चों को स्कूल से उठा लें, तो कल से तो आपने भी नहीं डराना कि जी बच्चे घर बैठे थे अब हम कैसे आते हैं। ओवरनाइट चेंज इस्लाम का मिजाज नहीं है। आपने इसलाह की, जो जो खराबियां थी उन खराबियों को मेंशन करते गए, पहले शऊर दिलाया, फिर एहसास पैदा होने के साथ ही जब लोग उसको एक्सेप्ट करते गए वो खराबियां निकाल दी, बाद में प्योर चीज़ रहेगी। जैसे आप दाल साफ़ करते हैं, रोड़े निकाल दिए, पत्थर निकाल दिए, कंकड़ निकाल दिए, बाकी दाल पका लेते हैं, चावलों में से भी निकालते हैं, ये करना है, लेकिन इसके लिए संजीदगी की ज़रूरत है। ये गैर संजीदा कोशिश नहीं कि आ, मैं एक दिन गई थी जाके मैंने प्रिंसिपल से बात की, नहीं, ये वेल प्लान्ड चीज़ें होनी चाहिए। आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते, आपका ये मुसलमान मुल्क है, आप आगे तक पहुंचे, वजीर आजम तक पहुंचे, आप वजीर आला के थ्रू जाएं, जहां जाएं कि भाई हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमने इधर ऐसे नहीं करना। जुबानी नहीं बातें होनी चाहिए, हर चीज़ आपके पास रिटर्न में होनी चाहिए। ये खराबी है, इससे ये नुकसान है, बच्चों में ये नेगेटिविटी आ रही है, क्लोज से शुरू करें। और इसका मैंने अमेरिका में जो देखा है लोगों को करते हुए, वो क्या है, मोस्टली पेरेंट्स और मदर्स वो खुद ही उन स्कूलों में इन्वॉल्व हो जाती हैं, वॉलंटियर करती हैं, बच्चे को छोड़ने भी जाना है, फिर 2 ढाई घंटे 3 बार 4 बार लेने भी आना है। तो इफ़ यू नीड आई कैन वॉलंटियर हेयर, जब वो वॉलंटियर करके सिंसियरली वहाँ कोशिश करती हैं, कोई मदर है कैंटीन में हेल्प कर सकती हैं कोई कुछ, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर स्कूल वाले उनसे फेमिलियर होते हैं, फिर बॉन्ड बनता है, फिर वो अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, तो वो आगे तक पहुँच जाते हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है। तो फिर आप लिए दिए ना रहे, आपका काम सिर्फ सुबह उठ के बच्चे का टिफ़िन बनाना ही नहीं है, और उसको रोज़ फ्राई खाने बना के और बर्गर और उस वक्त ऐसे ऑयली खाने देने का कि जिसको खा के वो वैसे ही सो जाए। आपका ये भी काम नहीं है कि सिर्फ उसके छोड़ने का इंतज़ाम करें और कि शुक्र है ये गया है, चलो अब मैं फ्री हूँ, अब मैं 4 घंटे शॉपिंग कर लूँ या घर देख लूँ। इंटरेस्ट लें, टेक इंटरेस्ट इन योर किड्स। सब पीछे, मेरा खाना नहीं पका कोई बात नहीं है, बहुत कुछ है घर में खा लेंगे, बट मैंने अपने बच्चे को ज़ाया नहीं करना। और मैं कहती हूँ ये जो हम दावा का पढ़ रहे हैं ना टॉपिक, अगर आप मैं बाहर जाके किसी को भी कुछ ना कह सकें, पाबंदी है, मुश्किल हैं, हालात नहीं, तो आपके मेरे स्टूडेंट तो घर बैठे हैं, किसी के 3 होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी के छोटे होंगे, किसी के बड़े, हर माँ एक उस्ताद होती है। जब ये माँ का रोल बिगड़ा, सोसाइटी बिखरी हुई है इस वक्त, माँ से वो मिला ही नहीं जो माशरे से मांगा और माशरे ने अपने रंग से दिया। तो इसके लिए सिंसियर कोशिशों की ज़रूरत है, और इट्स नॉट अ इम्पॉसिबल टास्क, ये बहुत आसान है, सिर्फ आप अपने आप को फोकस करें। मैं अक्सर देखती हूँ कि उस चीज़ में एफर्ट लगा रही हैं, जैसे माल लगा रहे हैं ना पेरेंट्स। अब आप मिसाल है कि 20 लोगों के बच्चे अगर हर महीने, जैसे आपने कहा कि 30 हज़ार रुपये आप 2 माह के देते हैं, 15 हज़ार रुपये तफ़ी होगी ना, 15 हज़ार को हम एक एवरेज ले लेते हैं, एक कम्युनिटी में लाइक माइंडेड 20 लोग जमा होते हैं, तो 20 बच्चों के 15 हज़ार के हिसाब से लगाइए तो कितने बन गए, 3 लाख रुपया सिर्फ 20 घरों में से एक ऐसी जगह पे जाता है, और एक महीना, और महीना गुजरते हुए देर कितनी लगती है। अब आप वो 3 लाख रुपया जमा करें एक जगह, सेक्रीफाइस करें, कोशिश करें, 6 माह की इकट्ठी फीस कर लें, 15 को 6 से ज़रब दें, एक एक बच्चे की फीस वो दे तो आप रहे ही होते हैं ना, आप गैदर करें, आपके पास एक हैंडफुल मनी जमा हो सकती है। आप कहते हैं ना ये काम शुरू कैसे होते हैं, फंडिंग कौन करेगा, हमें स्पॉन्सर कौन करेगा, आप खुद को स्पॉन्सर करेंगे। 20 माओं ने अपने बच्चे की 6 6 महीने की फीस इकट्ठी दे दी, अब वो कितना पैसा जमा हो जाएगा, वो लाखों में नहीं, वो इससे करोड़ों में भी जाएगा, लाखों में चले। अब चलते हैं, आप उन रिसोर्सेज को यूज़ करके दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ाना शुरू कर दें। यकीन करें, मैं पाकिस्तान में, मैं जहाँ जा रही हूँ देख रही हूँ घरों में स्कूल खुले हुए। हम कराची में थे, हमारे बिल्कुल, मेरे जो मामू हैं वहाँ, उनके बिल्कुल नेबर में घर है, जैसे बंगले, इतने बड़े बड़े ह्यूज बंगले हैं, तो पूरा मदरसा, इतनी गाड़ियाँ वैगने खड़ी, बुरकों में लड़कियाँ निकलती, भाई ये कैसे, यहाँ इजाज़त है ऐसे? कहती इजाज़त तो नहीं है लेकिन लोग खोल लेते हैं। पहले घर ले रहे थे, उस वक्त पता चला जब कि यहाँ मदरसा बनेगा, गली मोहल्ले वाले जो थे वो उठे कि यहाँ तो फिर रश बहुत होगा, आपको तो सबसे बड़ा रश और शोर का मसला। खैर उन्होंने कहा अच्छा नहीं ठीक है, घर ले लिया, कुछ देर कोई आया वहाँ रहने लगा 2 4 महीने, जब सारा मामला कूल डाउन हो गया, ऊपर मूव हुए, नीचे का हिस्सा अंदर ही खाते उन्होंने सारा सेटल डाउन किया, तो अगले महीने वह मदरसा शुरू कर दिया। और सुबह उठ के ऐसी शोर की आवाज़ें सारा दिन, यानी मैंने अपनी कुछ रिकॉर्डिंग्स करनी थी, मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि टू मच शोर था वहाँ, तो घर से घर जुड़ा हुआ कोई रोकता ही नहीं है। यहाँ तो लोगों ने घरों में, मैंने ऐसे कई और चीज़ें भी देखी हैं, तो मुझे नहीं पता ये अलाउड है नहीं है, बट एवर, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि रिसोर्सेज को जमा करें, थॉट्स को लें, प्लान बनाएं। कोई सिस्टर जो भी किसी स्कूल में पढ़ा चुकी हैं, प्रिंसिपल है, उनको साथ मिलाएं, पढ़े लिखे लोगों को साथ लेकर, एक ऐसा बंदा आपको मिल जाए, बाकी हेल्पर्स तो आपको मिलते जाएंगे। आप सब के, हम सब वॉलंटियर टीचर होंगे उस स्कूल की, खर्चे नहीं होंगे, आप टीचर्स बन जाएं, किसी एक को प्रिंसिपल हायर कर लें, और आप सबके ही बच्चे स्टूडेंट होने हैं, और एक बैच आप 1 साल तैयार कर लें, अगले साल अगर स्टैंडर्ड होगा तो आपके जगह नहीं होगी, इतने लोग आएंगे। तो बहरहाल ये तो बातें ही हैं, करनी है, ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हम माने ना माने, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने के बावजूद हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करे, ठीक है।